श्रोता, मार्गदर्शक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम स्तुति के द्वारा सामर्थी होना इस विषय पर संदेश सुन रहे हैं। मैं आशा करते हूं कि आप इन संदेशों के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त करेंगे तथा आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। जीवन में परमेश्वर की स्तुति करना सीखकर स्तुति के द्वारा आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करके जीवन की हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ आप कर पाएंगे। तो संदेश सुनने से पहले आइए सुने एक मधुर गीत।
Listening friends.
Namaskar Shrota Mitro.
We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast together on the road.
Hum anandit hain ki aap is prasaran marg par ek saath mein sammilit hue hain.
If you are joining this broadcast for the first time,
yadi aap is prasaran mein pehli baar shamil ho rahe hain,
we are in the middle of a series called Empowered by Praise.
To hum us sandesh shrinkhla ke madhye mein hain jiska naam hai Stuti ke dwara samarth pana.
I personally have experienced the power of praise during a time of trial in my life.
मैंने अपने जीवन के एक कष्ट के समय में व्यक्तिगत रूप से स्तुति की सामर्थ का अनुभव किया है.
During that time, the Lord taught me one of the most important lessons in my Christian life.
उस समय के दौरान प्रभु ने मेरे मसीही जीवन में मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी.
So I prepared these messages to help you develop that power too.
इसलिए मैंने इन संदेशों को आपकी सहायता के लिए तैयार किया है कि आप भी वो शक्ति विकसित करें.
In the past few messages, I have began to share these lessons with you.
पिछले कुछ संदेशों से मैंने ये शिक्षाएं आपके साथ बांटना शुरू की हैं.
Last time we talked about the ultimate connection to power in God's kingdom.
पिछली बार हमने परमेश्वर के राज्य में शक्ति के साथ मूल संबंध के विषय में बात की.
The ultimate connection is developing a life of praise.
वो मूल संबंध है स्तुति के जीवन को विकसित करना.
And developing a life of praise will change you for good.
और स्तुति का जीवन विकसित करना आपको भलाई के लिए परिवर्तित करेगा.
You cannot praise the Lord deeply and persistently without the Holy Spirit destroying all bitterness in your life.
पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में से पूर्ण कड़वाहट का नाश किए बिना आप प्रभु की स्तुति दृढ़ता और गहराई से नहीं कर सकते.
The Holy Spirit replaces your bitterness with the mercy of a merciful God.
पवित्र आत्मा आपकी कड़वाहट को दयालु परमेश्वर की दया के साथ बदल देता है.
Many Christians have experienced this, the power of mercy.
बहुत सारे मसीहियों ने दया की इस शक्ति का अनुभव किया है.
As you begin to honor God for who He is and what He has done,
जब आप परमेश्वर का आदर करना प्रारंभ करते हैं जो वो है और जो उसने किया है उसके लिए,
your eyes will move toward the Lord's provision.
तो आपकी आंखें परमेश्वर के प्रबंध की ओर देखने लगेंगी.
As you begin to thank God for His mercy and grace toward you,
जब आप आपके लिए परमेश्वर की दया और अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू करते हैं,
you will find that your eyes move toward the Lord's graciousness.
तो आप पाएंगे कि आपकी आंखें प्रभु की अनुग्रहकारिता की तरफ मुड़ रही हैं.
You will find healing for discouragement.
आप निराशा से चंगाई पाएंगे.
You will find uplifting for your despondency.
आप उदासी से बाहर निकलना प्राप्त करेंगे.
You will find a cure for your grief.
आप अपने गम के लिए समाधान पाएंगे.
Now I'm going to tell you a secret about the two passages of the scripture that I mentioned in the last broadcast.
अब मैं आपको वचन के उन दो अनुच्छेदों के विषय में एक रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनका जिक्र मैंने पिछले प्रसारण में किया था.
I told you to read both Isaiah 61 and Luke 4.
मैंने आपसे यशाया 61 अध्याय और लूका 4 अध्याय पढ़ने के लिए कहा था.
Those of you who have read those passages, you already have discovered they are one and the same.
आप में से जिन्होंने इन हिस्सों को पढ़ा आपने देख लिया होगा कि ये दोनों एक समान और एक ही हैं.
They were written 700 years apart.
ये 700 साल के अंतराल में लिखे गए.
But they are one and the same passage.
परंतु ये दोनों लेख एक समान और एक हैं.
Let's look at verse 1 of Isaiah 61.
आइए यशाया 61 अध्याय के एक पद को देखें.
It is a prophecy about the Lord Jesus Christ.
ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है.
So what does the Lord Jesus do in Luke 4 beginning verse 18?
तो लूका 4 अध्याय के 18 पद से शुरू करते हुए प्रभु यीशु क्या करता है?
He goes into the synagogue and he picks up the scroll which is the Old Testament.
वो आराधनालय जाता है, उसने पुस्तक ली जो कि पुराना नियम है.
And he begins to read it.
और वो इसे पढ़ना प्रारंभ करता है.
After he reads it, he says, "This has been fulfilled in your ears."
इसे पढ़ने के बाद वो कहता है, ये देखो, ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ.
In other words, he is saying,
दूसरे शब्दों में वो कह रहा है,
Now this prophecy 700 years earlier has been fulfilled in me.
700 साल पुरानी ये भविष्यवाणी मुझ में संपूर्ण हुई.
Verse 1 of chapter 61 of the book of Isaiah reads,
यशाया की पुस्तक 61 अध्याय का एक पद इस प्रकार से है,
The Spirit of the Lord God is upon me.
परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है.
Because he anointed me to bring good news to the afflicted.
क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि खेदित मन वालों को सुसमाचार दूं.
To bind up the broken hearted.
के टूटे हृदयों को जोड़ूं.
To proclaim liberty to the captives.
बंदियों की स्वतंत्रता का प्रचार करूं.
To open the prison door for those who are bound.
के बंधे हुओं के लिए बंदी गृह के द्वार खोलूं.
To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God.
के प्रभु के प्रसन्न रहने के साल का और हमारे परमेश्वर के बदला लेने के दिन का प्रचार करूं.
Look at the end of verse 2 and the beginning of verse 3.
दो पद के अंत और तीन पद के शुरू में देखिए.
to comfort all who mourn and provide for those who mourn in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, an oil of gladness instead of sadness.
कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर मुकुट रख दूं कि उनका विलाप दूर करके उदासी हटाकर हर्ष का तेल लगाऊं.
Listen to this one.
इसे सुनिए.
And a garment of praise instead of the spirit of despair.
और निराशा का आत्मा हटाकर स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाऊं.
I want you to remember these words are very important.
मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को आप याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Garment of praise.
स्तुति का ओढ़ना.
I'm going to contrast for you the garment of praise and the spirit of despair.
मैं आपके लिए स्तुति के वस्त्र और निराशा के आत्मा में अंतर स्पष्ट करने जा रहा हूँ.
But I want to tell you a couple of things about garments that you already know.
परंतु मैं वस्त्रों के विषय में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप पहले से जानते हैं.
You were not born with garments.
आपने वस्त्र पहने हुए जन्म नहीं लिया.
Garments are things that you yourself put on.
वस्त्र वो चीज हैं जो आप खुद पहनते हैं.
They may be given to you, but you have to put them on.
ये आपको दिए जा सकते हैं, परंतु आपको पहनना खुद पड़ता है.
If I come to you and hand you a jacket that cost me $1,000,
यदि मैं आपके पास आकर आपको एक जैकेट दूं जो मैंने $1,000 में खरीदी हो,
you may look at it and smile.
आप शायद इसे देखकर हंसेंगे.
You are being polite, but you actually hate the jacket.
आप सभ्य बन रहे हैं, परंतु असल में आप जैकेट से घृणा करते हैं.
So you take it, and what you do with it?
तो आपने इसे ले लिया, और आप इसका क्या करेंगे?
You put it on a coat hanger, and you put it in your closet.
आप इसे कोट के हैंगर में डालकर इसे अपने कमरे में रख देते हैं.
Or you fold it and put it in a drawer.
या इसकी तह लगाकर दराज में रख देते हैं.
But garments are not made to be folded and put in a drawer.
परंतु वस्त्र तह करके दराज में रखने के लिए नहीं बनाए जाते.
Garments are not made to just hang in a closet.
वस्त्र केवल कमरे में टांगने के लिए नहीं बनाए जाते.
A garment is something that you must put on.
एक वस्त्र वो वस्तु है जिसे आपको पहनना आवश्यक है.
A garment is something you wear on a regular basis.
वस्त्र वो चीज है जो आप लगातार पहनते हैं.
What about the garment of praise that the Lord is talking about here?
तो स्तुति के वस्त्र के विषय में क्या जिसके विषय में प्रभु यहाँ बात कर रहा है?
It is given to you.
ये आपको दिया जाता है.
It is part of your heritage as a Christian.
ये एक मसीही के रूप में आपकी धरोहर का हिस्सा है.
It is offered to you by the Lord.
ये प्रभु की ओर से आपको भेंट किया जाता है.
It is part of your salvation.
ये आपके उद्धार का हिस्सा है.
It is part of the package, if you like.
यदि आप चाहें तो ये आपकी भेंट का भाग है.
It belongs to you.
ये आपका
है. It is available to you.
ये आपके लिए उपलब्ध है.
It is at your beck and call, if you like.
ये आपके आज्ञा पालन के लिए तैयार है यदि आप चाहें.
But you are the one who has to wear it.
परंतु आप ही हैं जिन्हें ये स्वयं पहनना होगा.
You have to put it on.
आपको इसे ओढ़ना होगा.
Nobody can put it on for you.
कोई और इसे आपको नहीं पहना सकता.
Nobody can force it on you.
कोई इसे आप पर थोप नहीं सकता.
You have to choose to put it on.
इसे पहनने का चुनाव आपको खुद करना है.
The garment of praise works out the same way.
आराधना का वस्त्र भी इसी रीति से कार्य करता है.
You see, nobody can do praising for you.
आप देखिए, कोई और आपके स्थान पर स्तुति नहीं कर सकता.
You are performing to God.
आप परमेश्वर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.
He is the one who's watching you.
वही आपको देख रहा है.
So you must choose to be a praising person.
इसलिए आवश्यक है कि आप एक स्तुति के व्यक्ति बनना चुने.
You have to make that decision yourself.
ये निर्णय आपको खुद करना है.
Nobody can make it for you.
कोई इसे आपके लिए नहीं कर सकता.
You see, praise is like a river that flows from your heart.
आप देखें कि स्तुति एक नदी के समान है जो आपके हृदय से बहती है.
And what feeds that river is your gratitude of what God has done for you.
और इस नदी को भरने वाला वो आभार है जो आप परमेश्वर को उन सब कामों के लिए देते हैं जो उसने आपके लिए किए.
It is your gratitude to God for His greatness, goodness and mercy that He has shown you in Christ.
ये परमेश्वर के लिए आपका आभार है उसकी उस महानता, भलाई और दया के लिए जो उसने मसीह में आप पर दिखाई.
Please hear me right on this one.
कृपया यहाँ मुझे ठीक से सुनिएगा.
The Lord gives us a million reasons to praise Him.
प्रभु हमें उसकी स्तुति करने के लाखों कारण देता है.
And then the Lord gives us a desire to praise Him.
और फिर प्रभु हमें उसकी स्तुति करने की इच्छा देता है.
And then the Lord responds to our praise with more blessings and more rewards.
और फिर प्रभु हमारी स्तुति का उत्तर और अधिक प्रतिफल और आशीषों के साथ देता है.
What more do you want?
इससे अधिक आप क्या चाहते हैं?
But you are the one who has to do the praising.
परंतु स्तुति आप ही को करनी है.
You have to move your lips.
आपको अपने होंठ हिलाने हैं.
Because remember earlier we learned.
क्योंकि याद कीजिए हमने पहले भी सीखा.
It is out of the abundance of the heart, Jesus said, the lips move.
यीशु ने कहा हृदय की भरपूरी ही मुंह पर आती है.
You are the one who must stay wrapped up in God's garment of joy.
परमेश्वर के आनंद के वस्त्र में आप ही को लिपटे रहना आवश्यक है.
You are the one who must keep on keeping on the garment of praise.
स्तुति के वस्त्र को आप ही को संभाले रखना होगा.
Does this mean that you'll never be tempted?
क्या इसका अर्थ है कि आप कभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे?
Or you'll never get discouraged?
या आप कभी निराश नहीं होंगे?
No, I don't mean that at all.
नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है.
But just put on the garment of praise daily, regularly, moment by moment.
परंतु बस प्रतिदिन लगातार हर क्षण स्तुति का वस्त्र पहनते रहिए.
And every time the enemy comes in and he offers you the garment of despair, you'll be able to refuse it.
और जब भी शत्रु आकर आपके सामने उदासी का वस्त्र रखे तो आप उसे इनकार कर पाएंगे.
You will be able to say to him, No way, Satan, I have a better garment.
आप उससे कह पाएंगे बिल्कुल नहीं शैतान, मेरे पास इससे अच्छा वस्त्र है.
Every time you are tempted to put on the garment of discouragement, you'll be able to refuse it.
जब भी निराशा का वस्त्र पहनने के लिए आपकी परीक्षा हो आप इसे इनकार कर पाएंगे.
Because you already have the better garment of praise.
क्योंकि आपके पास पहले ही स्तुति का वस्त्र होगा.
Tell the enemy when you get used to silk, who wants hessian?
जब आप सिल्क के आदि हो जाएं, तो शैतान से कहिए टाट की किसे आवश्यकता है.
एंड ही विल रन फ्रॉम यू बिकॉज द स्क्रिप्चर सेड ही विल.
और वो आपसे भागेगा क्योंकि वचन कहता है कि वो भागेगा.
द सेकंड थिंग आई वांट यू टू नो इज दिस.
दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप जाने वो ये है.
द लॉर्ड कॉन्ट्रास्ट्स द गारमेंट ऑफ प्रेज विद द स्पिरिट ऑफ डिस्पेयर.
प्रभु स्तुति के वस्त्र का अंतर उदासी के आत्मा के साथ स्पष्ट करता है.
In Old Testament times,
पुराने नियम के समय में,
the spirit of despair led a person to tear their clothes.
निराशा का आत्मा मनुष्यों से उनके कपड़े फड़वाता था.
They literally ripped the fabric of the garment as a sign of deep sorrow.
वो गहरे दुख के चिन्ह के रूप में अपने कपड़े बिल्कुल फाड़ लेते थे.
It was a sign of a broken spirit.
ये एक टूटे हुए आत्मा का चिन्ह था.
It was a sign of being emotionally undone by intense sadness.
ये तीव्र दुख के द्वारा भावात्मक रूप से बर्बाद होने का चिन्ह था.
Let me give you some examples.
मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ.
In 2 Samuel chapter 13,
दूसरा सैमुएल 13 अध्याय में,
Tamar, the daughter of King David, was raped by her half-brother.
राजा दाऊद की बेटी तामार की इज्जत उसके सौतेले भाई के द्वारा लूटी गई.
The Bible said that she tore her ornamented robe in despair.
बाइबल कहती है कि उसने निराशा में अपनी सुंदर कुर्ती को फाड़ डाला.
In Job chapter 2, verse 12,
अयूब 2 अध्याय के 12 पद में,
Job's friends tore their garments.
अयूब के मित्रों ने अपने वस्त्र फाड़े.
Please listen to me very carefully as I conclude.
मेरे समाप्त करते हुए कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए.
When Jesus sat in the synagogue in Luke chapter 4 reciting Isaiah 61,
लूका 4 अध्याय में जब यीशु ने आराधनालय में जाकर यशाया 61 अध्याय का उच्चारण किया,
Here's what he was saying.
तो वो ये कह रहा था,
This prophecy has now been fulfilled in me.
ये भविष्यवाणी अब मुझ में संपूर्ण हुई.
He is saying that in me you can exchange your torn garments of sadness for the garment of praise.
वो कह रहा था कि मुझ में तुम अपने दुख के फटे हुए वस्त्र को स्तुति के वस्त्र के साथ बदल सकते हो.
Jesus is saying that in my name you now can replace the garment of despair with the garment of praise.
Yeshu keh raha hai ki mere naam mein ab tum nirasha ke vastra ko stuti ke vastra ke sath badal sakte ho.
Jesus is saying in me you can throw away the garment of sorrow.
Yeshu keh raha hai mujh mein tum apne dukh ka vastra utar kar phenk sakte ho.
And you can be clothed with the garment of power, healing and forgiveness that I have for you.
Aur tum shakti, changai aur kshama ka wo vastra pehen sakte ho jo tumhare liye mere paas hai.
That's what Jesus is saying in Luke chapter 4.
Luka 4 adhyay mein Yeshu yahi keh raha hai.
In me you can cover the nakedness of discouragement and despair with my beautiful garment of praise.
Tum udasi aur nirasha ki naganta ko mujh mein stuti ke mere sundar vastra ke sath dhaap sakte ho.
People come to God in prayer asking for all kinds of things.
Log prarthna mein sab kuch mangte hue parmeshwar ke paas aate hain.
Give me this God, do this God, give me this God.
Parmeshwar mujhe ye de, parmeshwar ye kar, parmeshwar wo de, parmeshwar.
Just think of someone coming to my house and walking straight into my kitchen.
Zara sochiye ki koi mere ghar aakar seedha rasoi mein aata hai.
And he opens the refrigerator and says, Michael, I'm really famished.
Aur fridge khol kar kehta hai, Michael, main bahut bhookha hoon.
Do you have anything good to eat?
Kya tumhare paas khane ke liye kuch achcha hai?
Now you say, wait a minute. When somebody does that, that's rude.
Ab aap kahenge, ek minute rukiye. Yadi koi aisa karta hai, to ye to badtameezi hai.
But how many of us come running into the presence of God asking for this and asking for that?
Parantu hum mein se kitne daudte hue parmeshwar ki upasthiti mein aate hain kabhi ye kabhi wo mangte hue.
Without coming to him first in praise and adoration.
Pehle bina uski stuti aur badhai ke.
Has the Holy Spirit spoken to you and brought you under conviction that you need to develop a life of praise?
Kya pavitra atma aapse baat kar aapko is vishwas mein laya hai ki aapko स्तुति का जीवन विकसित करने की आवश्यकता है?
Please accept his conviction.
कृपया उसके बुलावे को स्वीकार कीजिए.
God deserves to be adored, glorified, magnified and praised.
परमेश्वर बढ़ाई, महिमा, प्रशंसा और स्तुति का हकदार है.
Not just in a few seconds or a few minutes, but a whole life of praise.
कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों की स्तुति का नहीं, परंतु स्तुति के संपूर्ण जीवन का.
As you develop the life of praise, I hope you write to us and tell us how God has changed your life.
जैसे आप स्तुति के जीवन को विकसित करते हैं, मुझे आशा है कि आप हमें लिखेंगे और बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपका जीवन बदला है.
Until then, I wish you God's richest blessing.
तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं.
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप जीवित परमेश्वर के विषय में या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो तुरंत आज ही इस पते पर हमें पत्र लिखें। और हाँ, अपनी प्रार्थना विनतियां लिखना ना भूलें। यदि आप आपके विश्वास में 7 साहसिक पग ये पुस्तिका हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शक विश्ववाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 731 फरीदाबाद 7 हरियाणा। पता अंग्रेजी में सुन लीजिए, कार्यक्रम मार्गदर्शक विश्ववाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 731 फरीदाबाद 7 हरियाणा। तो श्रोता, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।